Tereo Ererangi o Te Mania. This episode was produced in Otatahi by Plains Media, with support from New Zealand On Air.
जलसा फिजी रेडियो और मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश. हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं कुछ मस्त सॉन्ग्स, कुछ जानकारी और बहुत सारी बातें. दोस्तों साथियों, आपका स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के लाइव ब्रॉडकास्ट में. मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश. और जी हाँ, आप ये तो शनिवार है तो आई एम श्योर एवरीबॉडी इज एंजॉइंग देमसेल्व्स. और क्रश से आप हमें सुन रहे हो फ्रीक्वेंसी 96.9 प्लेन्स मीडिया से. और अगर बाहर देखते तो थोड़ा अंधेरा हो चुका है, बट इट हैज़ बीन अ वेरी गुड डे. काफ़ी बढ़िया था आज यहाँ क्रशेस का माहौल. और जी हाँ, ये जो शो है आज जो हम लाए, हमारा 700th शो है ऑन प्लेन्स मीडिया. और शुक्रिया करना चाहेंगे साहिल, हु इज गोइंग टू हेल्प मी विद पैनलिंग टुडे. और साथ साथ में जो लोग बाद में हमें जो फेसबुक में देखेंगे, वी विल ट्राई टू स्विच ऑन टू फेसबुक इन से अनदर 5 मिनट्स ऑल्सो. तो हमारे साथ में शिवनील आ चुके हैं स्टूडियो, ही विल बी हेल्पिंग अस विद द लाइव वीडियो. और जैसे हमारे पास ज़्यादा करके गेस्ट रहते हैं, और इस बार वी आर गोइंग टू वेलकम नेहा शर्मा जी और शेखर किशोर जो बहुत पहुँच चुके हैं हमारे स्टूडियो में, उससे हम बात करते चलेंगे. और आज जो विषय है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं, व्यंगम योग. और एक इवेंट भी आ रहा है इसको लेकर, इसके विषय में हम बात करेंगे कब आ रहा है और उसकी जो जानकारी ये हमें नेहा और शेखर देने वाले हैं. और शेखर एक्चुअली इज कम ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो उससे हम बात करते चलेंगे. और जो लोग खेल कूद की दुनिया में दिलचस्पी रखते हैं, तो ऑफकोर्स ऑल द क्रुसेडर्स फैन, कॉन्ग्रेचुलेशन हम कहेंगे. एंड आई एम श्योर यू आर क्वाइट ओवर द मून बीटिंग चीफ्स. वॉज नॉट श्योर, आई डोंट नो व्हाट वॉज योर थॉट्स साहिल.
It was a very, very interesting and close game. Mm. It had gone either way. 36-32 score, Indra.
Mm-hmm.
And last minute, it was interesting. It could have gone either way.
Yeah, bilkul. So, prediction was a bit tight this time. I'm sure many people would not have been able to predict because both teams are very strong.
First half, Chiefs are winning.
Yep.
And then it was going backwards and forth. There was no clear winner ki kaun jeetega.
जी हाँ, और हम क्या करेंगे कि जो हम इंटरव्यू करने वाले हैं, हम जब बात करेंगे नेहा जी से और शेखर से, उससे पहले मैं एक गीत सुनेंगे, उसके बाद में हम अपना जो इंटरव्यू जारी करेंगे. और इंटरव्यू के बाद में वी आर गोइंग टू प्ले, जैसे लास्ट टाइम हमने जो प्ले किया था हमारे जो लास्ट शो में था, आवर इंटरव्यू विद मिनिस्टर टोड मेकले, जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के विषय में हम बात कर रहे थे बिटवीन ऑब्वियसली न्यूजीलैंड एंड इंडिया, जो अभी हाल ही में जो साइन हुआ है उसका जो हम ज़्यादा करके जो पॉजिटिव साइड आपने सुने होंगे. और इस बार भी में हमें मौका मिला बात करने, हमने बात की है मीगन वुड से जो लेबा के जो स्पोक्स पर्सन थे, और हमने वही उसी विषय पे बात किया जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है. और जैसे हम न्यूज़ में सुन रहे थे कि लेबा डिड कम ऑन बोर्ड बिकॉज ऑब्वियसली दे सपोर्ट वाज नीडेड, लेकिन दैट टुक अ बिट ऑफ टाइम और मे बी दैट कुड हैव बीन सम कुछ इश्यूज जो कुछ अब हमने बातें की हैं. और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिला जो शायद हमें पहले नहीं पता था, लाइक डेफिनेटली मुझे नहीं पता था, एंड आई वॉज वेरी कीन इंटरेस्टेड. तो मीगन वुड्स ने काफ़ी कुछ जो क्लेरिफाई किया है, तो वो वीडियो भी हमारे पास है जो साहिल विल प्ले इन द लास्ट काइंड ऑफ 15 मिनट्स. सो डोंट गो एनीवेयर, आप सुन सकते हो ऑन फ्रीक्वेंसी, दो हमारा जो लाइव जो फेसबुक तो बंद हो जाएगा, बट ऑन फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट इंटरव्यू. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं इस शो को लेकर. सो आई लास्ट साहिल इफ यू कुड प्ले वन म्यूजिक, एक गीत हमें सुना था. क्या होता है अक्सर जो गीत मिस हो जाते हैं हमारे जो इंटरव्यूज जब भी होता है, और ऑफकोर्स हम स्पोर्ट्स न्यूज भी कभी मिस करते थे, वी विल ट्राई टू ब्रिंग इट टू यू एज मच एज वी कैन. अदरवाइज हम ज्यादा कि जो अपने जो पेज है जलसा फिजी रेडियो पेज है फेसबुक पे, उस पर हम पोस्ट कर देते हैं. तो चलो साहिल, हम गीत सुनते हैं एंड देन वी विल टॉक टू आवर गेस्ट्स.
परांदा तेरा लाली, काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाली, रूप दियो रानी तू परांदे को संभालनी, रूप
किसी मन चले का तुझके आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल किसी मन चले का तुझके आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल तेरे गालों की ये लाली
गालों की ये लाली गालों की ये लाली
दावतें देती है तेरे गालों की ये लाली बन बैठा दिल मेरा तेरा ही सवाली शोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं
शोलों से लिपट के पतंगे झूमते हैं
जल जाए चाहे शमा को चूमते हैं किसी सरफिरे का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल ओ किसी सरफिरे का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल
Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. जी हाँ दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के सेल लाइव ब्रॉडकास्ट में. मैं हूँ वंस अगेन प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और मेरे साथ पैनलिंग में साथ दे रहे हैं साहिल. और जो लोग हमें हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उन जलसा फिजी रेडियो फेसबुक लाइव तो हम शिवनील को धन्यवाद देंगे फॉर टेकिंग आउट इस टाइम और हमें हेल्प करने के लिए. तो चलो हमने जैसे शुरू में मेंशन किया था कि आज हमारा जो विषय रहेगा टॉपिक रहेगा जिसके विषय में आज बात करने वाले हैं वह है विहंगम योग. और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के गेस्ट नेहा शर्मा जी और साथ साथ में शेखर किशोर. वी आई हैव मेट एक्चुअली नेहा बिफोर एज वेल और बात भी पहले भी हुई है एंड शी इज़ प्रीटी मच एक्साइटेड. जो एक इवेंट आ रहा है क्रशेश में जिसके विषय में ज़्यादा करके हम सुनेंगे फ्रॉम नेहा एंड शेखर. और शेखर एक्चुअली केम ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया तो आप आए हो स्वागत करेंगे क्रशेश में. होप करते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड तो आपके लिए नहीं था आज तो आई थिंक वेदर उतना बुरा नहीं था सो यू शुड बी डूइंग वेल. तो चलो हम शुरू करते हैं नेहा आपके साथ में. तो आप बताइए कि आज आपका दिन कैसा.
आज बहुत ही अच्छा दिन रहा मेरा, क्योंकि हमने बहुत सारी कम्युनिटी से मिल के इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया. विहंगम योगा इवेंट फॉर इनर पीस इट इज़ गोइंग टू कम इन 26th ऑफ सेप्टेम्बर, एंड ये प्रोग्राम होने वाला है टेम्पल टल्ट कम्युनिटी सेंटर में. और इसका मेन मोटिव ही ये है कि हम कैसे मेडिटेशन को अपनी लाइफ में बिल्ड कर सकें और उससे कैसे इनर पीस पा सकें. और शेखर जी इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम लोग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में एंड देन सिंगापुर में ये प्रोग्राम होने जा रहा है.
जी शेखर जी, तो आप बताइए और इस प्रोग्राम के विषय में.
सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें ये मौका दिया कि आज हम विहंगम योग के विषय में बात कर पा रहे हैं. क्राइस्टचर्च में जैसे आपने पूछा कैसा लगा, प्रीटी मच सिमिलर है वेदर जैसा सिडनी में था. थोड़ा सा ठंड है, बट क्राइस्टचर्च का एक अपना एक अलग आनंद है. खुले खुला शुद्ध वातावरण है यहाँ पे, और मुझे तो यहाँ आके लगा कि यहाँ पे तो साधन करने वालों के लिए तो सबसे अप्रोप्रिएट जगह है ये कि यहाँ पे आप ध्यान साधन करें. इतनी खुली वातावरण में इतना बढ़िया एनवायरमेंट है, तो आपका ग्रोथ तो अच्छा हो गई.
जी बिल्कुल, साउथ आइलैंड की अगर बात किया जाए स्पेशली, बिकॉज साउथ आइलैंड इज नोन फॉर दैट. और काफी जो टूरिस्ट है और काफी लोग भी आते भी है फ्रॉम अदर सिटीज, एंड आई थिंक यूएस वाज मेजर मार्केट एक समय पे, एंड दे वर रशिंग कमिंग इनटू न्यूजीलैंड और स्पेसिफिकली फॉर साउथ आइलैंड, बिकॉज यहाँ का उसी तरह वातावरण. एंड आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ दोज ग्रेट प्लेसेस जब हम बात करते हैं विहंगम योग के. और अब ये आ गया है आई थिंक कि हम जब बात करते हैं योगा की, मेडिटेशन की, इट्स नॉट अ न्यू थिंग. और ऐसा नहीं कि ये सीमित हम ही पे है, इंडियंस या फ्रॉम इंडिया, अब ये सभी फॉलो करते हैं. एंड इट्स फाउंड एवरीवेयर, आप चाहे यूएस चले जाओ चाहे कैनेडा, कहीं पे आपको ये मिलता है. और जब बात करते हैं विहंगम, सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज इट इज काइंड ऑफ कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड.
जी, विहंगम शब्द का अर्थ है पक्षी.
जी,
तो विहंगम योग का कंसेप्ट क्या है, स्वामी जी ने, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने, जिन्होंने 1924 में विहंगम योग की स्थापना की थी, उन्होंने 17 वर्षों तक की कठोर तपस्या करके इस ज्ञान को पाया था कि कैसे एक आत्मा अपनी जर्नी आध्यात्मिक शुरू करता है और संसार में जीते हुए अपने सारे कर्तव्यों को करते हुए, सारे ड्यूटीज़ को करते हुए, कैसे वो धीरे 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 आगे बढ़ते जाता है और एक बार परमात्मा से एकाकार हो जाता है. तो यहाँ पे स्वामी जी क्या कहते हैं कि जब आपकी आत्मा उस लेवल पे सेटल हो जाएगी तो वो विहंगम पक्षी की तरह उड़ते हुए आत्मा के धरातल पे साधन करके उस परमात्मा को पाएगी. तो विहंगम शब्द का अर्थ एक्चुअली वही है. लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि योग और योगा दोनों में काफी बड़ा अंतर है. योगा जो है वो शरीर का आसन है, शरीर को फिट रखने की एक तरीका है, प्राणायाम आता है. जैसे हम सभी ने देखा है, हमारे जो योग शास्त्र की अगर हम बात करें तो महर्षि पतंजलि ने जो हमें अष्टांग योग के विषय में बताया है, तो उसमें क्या क्या है, यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि. लेकिन हम सभी सिर्फ योगा में अटक जाते हैं या प्राणायाम में अटक जाते हैं, जबकि ये जर्नी बहुत लंबी है. सो इट इज नॉट दैट पीपल डोंट वॉन्ट टू डू, इट इज मे बी पीपल हैव नॉट फुली कंसेप्चुलाइज्ड इट, द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट. और योग क्या होता है, योग जैसे विहंगम योग हम कहते हैं, हम योगा नहीं कहते हैं. वो क्यों कहते हैं, योग के विषय में स्वामी जी ने कहा है, योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि. इसका मतलब क्या है कि योग शब्द का अर्थ क्या है, जोड़, दो तत्वों का मिलन जो एक जैसी तत्व हो. तो यहां आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन तत्व है, उनका मिलन जो है उसको योग कहते हैं. तो ये स्वामी जी ने समझाया है. तो विहंगम योग जो है वो एक साधना की पद्धति है, वो एक ऐसा तरीका है कि संसार में रहते हुए अपने सारे ड्यूटीज को पूर्ण रूप से करते हुए और उसको करते करते हम कैसे धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाएं, और वो बदलाव कैसे आएगा, वो शांति हमें कैसे मिलेगी, सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा, न सुनने से होगा. तो उसके लिए जो साधन का तरीका है वो 10 मिनट की साधना सुबह और 10 मिनट की साधना शाम को, सिर्फ इतना कहने के लिए स्वामी जी सिखाते हैं और उसके माध्यम से हमारी तरक्की होती है, हम आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ पर्पस।
डेफिनेटली, और जब बात आती है ऐसा कोई सब्जेक्ट की, देन डेफिनेटली आई मीन वी कांट कवर एवरीथिंग टुडे, ये तो ऑब्वियसली बात होती है, वी नीड मोर टाइम और मे बी मोर सेशंस ये हम कवर करने के लिए। एंड हम क्या करेंगे, विल क्विकली डाइव इन टू द एक्चुअल इवेंट, तो सो दैट पीपल कैन एक्चुअली नो एंड लर्न एंड मे बी वी वुड लाइक देम टू डायराइज, बिकॉज कभी ऐसा होता है कि भाग दौड़ में भूल जाते हैं और बाद में हमसे लोग मिलते हैं तब पूछते हैं कि हमने कोई वीडियो देखा था या कहीं पर फोटोज देखा था, हम डिन रियलाइज कि उस दिन हो रहा है। हमारे साथ भी हो जाता है, सैटरडे संडे भी मिक्स हो जाता है, क्योंकि फ्राइडे मिक्स वो कर देते हैं ना हम लोग। तो आप बताइए, जो ये आपने बोला था विहंगम योग मेडिटेशन फॉर इनर पीस, तो ये जो आपका प्रोग्राम है, तो ये कब हो रहा है?
ये होएगा 26 सितंबर
जी,
और ये होने वाला है टेम्पलटन कम्युनिटी सेंटर में
जी।
इट विल बी फॉर अबाउट 2 to 3 hours, एंड जिसमें आपको मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जाएगी, जिस मेडिटेशन टेक्निक से हम अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं और अपने थॉट्स में किस तरह से क्लैरिटी आएगी, लाइक इफ़ यू डू फॉर 10 मिनट्स, हाउ बिग डिफरेंस इट कैन मेक इन योर लाइफ। सो इट विल बी मोर ऑन टू हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, हाउ टू ओवरकम योर ओवर थिंकिंग्स। सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी वन, इट्स नॉट पर्टिकुलर टू कि हिंदू कम्युनिटी के लिए है, इट्स फॉर एवरीवन एंड इट्स फॉर ह्यूमैनिटी। विहंगम योगा संस्थान आज भारत में नहीं, पूरे 50 कंट्रीज में फैल चुका है, जहाँ वहाँ पे नॉट इवन द लाइक कि कॉमन पीपल, एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन देयर। सो इवन इन ऑस्ट्रेलिया वी हैव गॉट 2 weeks प्रोग्राम। सो या
जी हाँ, तो जैसे आपने सुना कि ये जो प्रोग्राम है विहंगम योग मेडिटेशन फॉर इनर पीस, ये रहेगा 26 सितंबर 2026 और टेम्पलटन हॉल, मेरे ख्याल से दैट एड्रेस शुड बी 64 केक रोड, क्यों मुझे याद है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इवेंट्स होता है टेम्पलटन में, तो टेम्पलटन भी काफ़ी कॉमन प्रेमिसज हम कहेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू वे मोस्ट ऑफ आवर पीपल आर, हेल्सवेल, विग्राम, रोल्स्टन, सभी का नज़दीक हो जाता है, काफ़ी सेंट्रल भी है। सो आप जा सकते हो टेम्पलटन हॉल में 26 सितंबर, मेरे ख्याल से शाम के समय होगा,
छः बजे
से, जी हाँ 6 बजे से शाम को होगा। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट अ फ्री इवेंट?
यस इट इज़, इट इज़ अ फ्री इवेंट।
जी हाँ, तो ठीक है, ये फ्री इवेंट है जहाँ आप जा सकते हो। जैसे नेहा ने मेंशन किया है कि अगर आपके नेबर्स कीवी वगैरह हो या और कोई भी हिंदू ना भी हो, देन यू कैन जस्ट ब्रिंग देम अलोंग, बिकॉज एज मैंने शुरू में बोला था, ना योग या योगा हम कह सकते हैं, इट इज़ अ स्प्रेड, और उस पर हम बाद में हम बात करना चाहेंगे कि वे आर डिड योगा कम फ्रॉम, बिकॉज वी न्यू योग तो ऑब्वियसली हमारे संस्कृत शब्द से आया होगा, बट योगा कहाँ से आया, या तो फिर जब हम राम कहते हैं फिर इसमें रामा जुड़ जाता है, तो मैं भी शेखर जी आप काफ़ी आपके पास जो नॉलेज हो जाता है, एंड वी आर गोइंग टू हैव द इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन सम अदर। बट क्विकली ऑन दिस प्रोग्राम, हम जब बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम जो होने जा रहा है 26 सितंबर को, तो ऑब्वियसली आप तो रहोगे ना?
जी मैं
आ रहे हो, जी आप आ रहे हो, और नेहा आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो जी हाँ, और हमारे जो हमने अभी काफ़ी लोगों से बात की है, हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स या कम्युनिटी से काफ़ी लोग से बात किया है, हम मिले भी थे एक इवेंट में, तो वहाँ भी काफ़ी लोग थे, एंड वी नो दैट ऑलरेडी चर्चा हो रही है हमारे कम्युनिटीज में, सो वी नो कौन कौन लोग अभी से आ रहा है, लेकिन कोई बाहर से कोई ऋषि जी या कोई गुरु जी आ रहे?
जी, तो विहंगम योग के जो वर्तमान परम्परा सदगुरु हैं, सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज, वो स्वयं आ रहे हैं, उनके साथ में संत नामदेव जी आ रहे हैं। तो स्वतंत्र देव जी महाराज इस समय हर लिटरली साल में 9 महीने पूरे विश्व में अलग अलग देशों से उनका निमंत्रण आता है, वो वहाँ जाते हैं, इस ज्ञान का प्रसार प्रचार करते हैं। और संत नामदेव जी महाराज हैं, वो इंटरनेशनल प्रोपगेशन के वो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, और हमारा जो विहंगम योग संस्थान जो है उसका जो एक इतने तरह के हम सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं समाज की सेवा का, एज ए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि यूनाइटेड नेशंस के 2 bodies हैं, इकोसॉक और यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट, दोनों ने हमें रिकॉग्निशन दिया है, और संत नामदेव जी उनके भी चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, और उनको तो पूरे वर्ल्ड से जगह जगह से इन्विटेशन आता है, वो जाके अलग अलग सब्जेक्ट्स पे टॉपिक्स पे बात करते हैं। अभी इसी कार्यक्रम के सीरीज में सिडनी में जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें संत नामदेव जी का विशेष दो उनके साथ वर्कशॉप्स रखा गया है वहाँ के, एक तो हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसमें उन्होंने सारे कम्युनिटी लीडर्स को इनवाइट किया है, वो चाहे किसी भी धर्म के हों किसी भी बैकग्राउंड के हों, और दूसरा एक हो रहा है जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं डॉक्टर्स नर्सेस ऑन्कोलॉजिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑल ऑफ दोज आर इन्वाइटेड टू दैट बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज दैट टेक्निक थ्रू विच दे कैन बी इन दैट काम जोन बिकॉज दे आर डीलिंग विद द मोस्ट ट्रोमेटिक सिचुएशंस एंड दे आर रियली एब्जॉर्बिंग ऑल ऑफ दैट विद इन देम सो इट्स वेरी ईजी फॉर देम टू बर्न आउट.
Yeah, बिल्कुल, because
they want to learn.
I'm in a law firm, तो हम clients वगैरह से जो deal करते हैं, there was a time जब मैं immigration department में था, उसमें भी application वगैरह कर रहा था. So जब कोई किसी successful हो जाता है, तो बहुत easy होता है ना, phone उठाकर बोल देते हैं कि congratulations आपका PR आ गया है, आपको visa मिल गया है, and then no, that's a very no good discussion होता है. लेकिन वहीं पे जब कुछ rejection आ जाता है, decline आ जाता है, तो फिर कोई ऐसा issue आ जाता है जो हमें discuss करना पड़ता है clients के, और काम करते करते हमारा एक kind of bond या relationship बन ही जाता है, और काफ़ी लोग तो हमें जानते थे community से, तो वो discussion काफ़ी hard होता है. तो ये तो मैं छोटा सा example दे रहा हूँ, लेकिन how you tackle that. और आप बात कर रहे हो कि जो surgeons doctors तो वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है. And then if you start feeling guilty, क्योंकि होता ना हमें guilt आ रहा था कि ये हमारा client था, you know, maybe I failed him, या मैं और कुछ कर सकता था ना वो कभी भी, तो उसका. और ये जो होता ना जो training हर profession में नहीं होता है, and sometimes no people आते काम शुरू कर देते हैं, काम पहले अपने शुरू कर दिया, आपका degree मिल गया और काम करना, and this is something that you have to learn on the way. और काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, एंड एज लोएज आर जो काफ़ी हाई पे स्ट्रेस, आई थिंक पेपर्स में एक दफे आया भी था, देन स्ट्रेस उसका बहुत हाई होता है. तो आई थिंक इफ एनीथिंग कैन हेल्प दैट, अभी तो मेंटल इलनेस इज आउट दे, ये नहीं कि पहले नहीं था, बट शायद पहले बात नहीं करते थे ना लोग, डू एक्सप्रेस दैट वे, बट अभी तो ठीक है कि एटलीस्ट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, तो पता चल रहा है, एंड मे बी नाउ किड्स आर एबल टू कम अप टू द पेरेंट्स एंड टेल देम कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. बट हमारे समय में तो वो ऑप्शन नहीं था ना, हम नहीं बोलेंगे, हम खुद लेकर स्ट्रेस चलेंगे, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. और जब हम बात करते हैं ऐसे जो आप बोल रहे रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बोल रहे कि इतना प्रसिद्ध है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय यू नो कंट्रीज जा रहे हैं, तो डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्लेस लाइक कुछ जगह कुछ प्रमिसेस आप लोगों के पास है?
जी, तो इंडिया में हमारे विहंगम योग के 6 मुख्य आश्रम हैं. तो जहाँ पे एक आश्रम है बलिया जिले में, जहाँ स्वामी जी ने गांव में एक मिट्टी की गुफा में अनेक वर्षों तक तपस्या की थी. फिर प्रयागराज में गंगा के किनारे हमारा एक आश्रम है जिसको हम झूंसी आश्रम कहते हैं, वहाँ पे स्वामी जी की समाधि भी है. फिर हमारा एक आश्रम है हिमालय में शून्य शिखर पे, जहाँ स्वामी जी ने बैठ के गुफा में बैठ के उस ग्रंथ स्वरवेद का रचना की थी, जिसमें उन्होंने अपने पूरा आध्यात्मिक अनुभव लिख दिया. फिर एक आश्रम है गया में मधुमति आश्रम के नाम से, और एक है गुजरात में दंडक वन में, वो दंडक वन आश्रम उसका नाम ही है. और स्वरवेद महामंदिर जो कि एक अद्भुत कृति है, आज उसके जैसा उसके समान कोई भी मेडिटेशन सेंटर पूरे विश्व में नहीं है.
जी शेखर जी, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, हमारे पास फोटो जो हम दिखाना चाहेंगे, बिकॉज मैं और साहिल से पहले हम देख रहे थे, साहिल इफ कुंड पुल इट अप, एंड हम भी देख ही रहे थे, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है,
अद्भुत है वो. उसमें 20,000 लोग एक साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं, और स्वरवेद महामंदिर के अंदर में पूरे दीवार के ऊपर में सफ़ेद संगमरमर के स्लैब्स लगे हैं, और उन स्लैब्स के ऊपर में स्वरवेद के 3,700 दोहे अंकित किए गए हैं, साथ साथ पुराण के भागवत गीता से रामायण से जहाँ जहाँ ब्रह्म विद्या ज्ञान की चर्चा हुई है उन सब के दोहे उस स्वरवेद महामंदिर के दीवारों पर अंकित हैं. तो ये जो अद्भुत जगह है, यहाँ पे लोग जाते हैं बैठ के ध्यान करने के लिए. और आज तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका ओपनिंग भी श्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, और उसमें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अब उसे टूरिज्म मैप पे भी डाल दिया है कि जब लोग वाराणसी जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर देखने जाते थे, वो लोग स्वरवेद महामंदिर भी देखने आते हैं. और इस समय पूरा मंदिर खुला भी नहीं है, केवल फर्स्ट फ्लोर खुला है, और हमारा महीने में कम से कम 1.5 लाख लोग इस समय आ रहे हैं वहाँ पे उस मंदिर का दर्शन करने के लिए केवल, क्यों क्या है वो अद्भुत जगह। तो बाहर से तो आप देख रहे हैं पूर्ण हो चुका है, अंदर में तो अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन वो काम चल रहा है धीरे धीरे, वो सब पूर्ण हो रहा है। तो ये जो अद्भुत कृति है ये इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि वहां पे आके सारे ऋषि ऋषिकाओं की मूर्तियां वहां लगी पड़ी हैं जो हमारे पूर्ण संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहां जाके जब कोई साधन करेगा तो उसे स्वयं अनुभव होगा कि एक योगी की धरा भूमि पे जब साधन करो तो उनके परमाणुओं से क्या असर, उनके क्या फायदा मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा कि आप सर्वे महामंदिर जरूर आए और अपने आप से अनुभव करें देख के कि वो कैसी जगह, अद्भुत जगह है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर इस चीज को फील करेंगे।
जी हाँ बिल्कुल, जाना तो है हमें भी, इंडिया जो है हमारे जो लिस्ट में हम कहेंगे कभी जाएंगे जरूर। और वैसे तो जो सबसे नंबर वन आता है ना ताजमहल देखना है, तो चलो ये भी हम डाल ही देते हैं तो भी देख लेंगे। जी हाँ, तो नेहा बताइए कि आपका जो इंटरेस्ट है योग या योगा में कब से आया?
मैं बचपन से ही योग से जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे डैड जो हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं एट एम्स इन इंडिया। सो स्टार्टिंग से ही उनका एक अध्यात्म के प्रति एक इंटरेस्ट रहा है और मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है कि किस तरह से उन्होंने बैलेंस लाइफ जी है पूरे अपने थ्रू आउट हिज लाइफ। तो दैट मेक मी कि एक इनर्ट जागृति हुई उससे कि मेडिटेशन में मुझे जाना चाहिए। और वाइल डूइंग द स्टडी और जॉब देयर सो मच स्ट्रेस इन माय लाइफ, बट व्हेन आई डू द मेडिटेशन इट गिव मी सो कामनेस विद इन माय सेल्फ। सो या
जी, और जब बात करते हैं जिसे आप बोलते हो कि व्हेन यू डू मेडिटेशन, तो फॉर अस इट्स ए टास्क, जिसे हमारे पास अगर 12 आवर्स होता है तो ऑफकोर्स आपको जो स्लीपिंग टाइम निकालना पड़ता है, फिर आपका वेकिंग टाइम निकालना पड़ता है, फिर आपको अपने जो खाने बनाने या खाने का टाइम निकालना पड़ता है, देन यू माइट हैव रेस्ट आवर, और फिर सोशल मीडिया का भी टाइम निकालना पड़ता है। तो ये जो आप बोलते तो हफ्ते में या डेली करना पड़ता है, हफ्ते में एक बार करना पड़ता है?
देखिए ये जो है इसके बेनिफिट जब आपको मिलने लग जाते हैं तो आप रोज ही उस चीज को करना चाहेंगे ना। तो आई हैव अ लिटिल बॉय बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक अ टाइम फॉर इट, क्योंकि ये मेरे को पता है कि आई कांट लिव विदाउट इट ना, इसके बिना मेरी लाइफ नहीं चल पाएगी। तो एवरी 10 मिनट इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग आई डू दैट, और इवन माई लिटिल बॉय डज दैट टू, ही रिसाइट द गायत्री मंत्र एंड ही लव्स टू डू दैट टू।
जी हाँ, तो आप बोल रहे हो कि आपके लिए वो 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, सो 20 मिनट्स इन अ डे आपको निकालना पड़ता है मेडिटेशन के लिए। जी हाँ,
मेरे ख्याल से मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे दो बच्चे हैं अब तो बड़े हो गए हैं, बोथ हैव ग्रोन अप इन ऑस्ट्रेलिया, राइट फ्रॉम द एल्डर वन वाज 1 year ओल्ड व्हेन वी केम टू ऑस्ट्रेलिया एंड द लिटिल वन वाज बोर्न देयर। सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन देम इज दैट व्हेन दे स्टार्टेड टू डू द मेडिटेशन रेगुलरली जस्ट 10 मिनट्स, we say to them, we are not binding you that you must do it at this time. We say you start your day with 10 minutes of meditation and you end your day with 10 minutes of meditation. So basically, it is like resetting your life completely. One, recharge before you start the day. So you are with clear vision, clear way you are approaching the whole day. And last, before you go to bed, you are basically cleansing yourself by doing that 10 minutes of meditation and you go to a peaceful sleep. So this is the most simplest way I can put it to you about the benefit of that. And you don't have to push yourself. And what Swamiji has made it so simple for us, whether you are able to sit on the ground or if you are unable to sit on the ground with a cross leg, you can sit on the chair. If you are unwell, you can meditate even while lying, while your back is straight. You can still meditate. So what we have seen is that कि लोग अलग अलग सबके समस्याएं हैं और आप उनको एक रिचुअल से नहीं बांध सकते। और विहंगम योग कोई रिचुअल नहीं है, विहंगम योग कोई अंधविश्वास नहीं है। यहाँ पे यहाँ तो स्पष्ट है, अनुभव करो, विश्वास करो, तुम स्वयं आगे समझोगे ये क्या है। यहाँ हर चीज अनुभव का विषय है विहंगम योग में। तो यही चीज हम लोग सबको बताते हैं कि कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं कि आप ये करो ये नहीं करो, ये छोड़ो वो नहीं छोड़ो। आप सब चीज को करते हुए अपने लाइफ में 10 मिनट की साधना सुबह और 10 मिनट की साधना शाम को जोड़ लें और स्वयं से अनुभव करें कि आपके लाइफ में क्या बदलाव आता है।
جی ہاں بالکل, آئی تھنک آپ کافی صحیح کہہ رہے ہو, اور ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں ابھی ابھی کہ اگر جنریشن کی اگر بات کرو گے تو اٹس ناٹ انف, جسے ہم نے شروع میں مے بی آف ایئر ہم نے شاید بات کی ہوگی کہ پہلے ایک ٹائم تھا ہمیں جو بتا دیا جاتا تھا ہم مان لیتے تھے, لیکن ابھی نہیں مانتے نا, ابھی تو جو نیا جنریشن ہے نہیں مانیں گے, تو اسی لیے آئی اگری وتھ یو, اگر ایسا آپ کچھ بولتے ہو یا ایک ٹاسک دیتے ہو کہ چلو کر لو اور تم اپنا ایکسپیرینس, بیکاز یہاں کا جو کلچر جب ہم آئے تھے فجی سے تو یہاں کا ڈفرنٹ کلچر ہے, یہاں جو ٹیچر نا اسٹوڈنٹ سے پوچھے گا نا واٹس یور ویوز واٹس یور پوائنٹ, جب میں کام کر رہا تھا تو میرا سپیریئر نا مجھ سے پوچھتا تھا وٹ ڈو یو تھنک, میں بول رہا ہوں کہ یو نو ایسا بھی ہوتا ہے, بیکاز ہمیں تو صرف ٹاسک دیا جاتا تھا, یو ہیو ٹو ڈو ایگزیکٹ کوسچن, آپ کا نہیں تھا کہ آپ پوچھا بھی جائے گا کہ ہاؤ ڈو یو فیل. اینی وے ہمارا جو سمے تو کافی بھاگ ہی رہا ہے, وی آر آن کائنڈ آف آلموسٹ آن ٹائم, تو ہمارے پاس کچھ بھی کچھ تھوڑے موڑے سمے بچے ہیں جس میں ہم کوشش کریں گے ویل ونس اگین گو بیک ٹو دی پروگرام اٹ سیلف سو دیٹ پیپل آر اویئر, وہ لوگ اپنا ڈائری وغیرہ مارک کر لیں نوٹ کر لیں, اینڈ دین اوبیس جیسے میں نے بولا یہ جو ٹاپک ہے اتنا وشال ہے کہ ہم نہیں کور کر پائیں گے کسی بھی حالت پہ, بیکاز یو ہیو ٹو گو بیک ٹو 1920 سے آپ نے کچھ بولا تھا تو بہت پیچھے سے پھر آگے آنا پڑے گا, تو وٹ ویل ڈو از ویل میک سم ادر سیشنز, آئی نو آپ کو تو جانا پڑے گا آسٹریلیا, بٹ وی مائٹ وانٹ ٹو کنیکٹ تھرو ٹیکنالوجی, کبھی ہم پھر کنیکٹ کریں گے, اور ہمارے پاس کچھ گیت بھی سر تشائل کے پاس ہوگا اپلائی کرنے کے لیے, اور ساتھ میں جیسے میں نے مینشن کیا تھا ہمارے پاس میگن ووڈز کا جو انٹرویو ہے آن فری ٹریڈ اگریمنٹ, تو ہم وہ بھی آپ تک لانا چاہیں گے سنانا چاہیں گے, سو دیٹ یو کین ہیئر ہاؤ views thoda different rahega if you compare it with Todd McLay's Alia interview on free trade agreement, same hai subject but views kafi different hai, questions different hai, so you might want to compare and contrast and see where those different people are coming from. Going back to this program, Vihangam Yoga Meditation for Inner Peace جو ہو رہا ہے ٹیمپلٹن میں on 26 September 2026, تو جاتے جاتے نیہا آپ کے طرف سے few words to the audience.
میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اس ایونٹ میں آ کے آپ کو بہت ہی یونیک میڈیٹیشن ٹیکنیک سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, اور اس پرم ستا سے ملنے کا موقع مل رہا ہے جنہوں نے ہمالیہ میں سادھنا کی, تو آئی وڈ انوائٹ ایوری ون ٹو کم دیئر اینڈ جوائن اینڈ لرن دا میڈیٹیشن.
تھینک یو سو مچ نیہا جی. چلو شیخر جی, ہم آپ سے بولیں گے کہ پلیز ڈو کم ٹو دا پروگرام 26 September کو, آپ کو بھی آنا ہے ٹیمپل ٹاؤن ہال میں, پھر ہم ملیں گے اور اس کے بیچ میں اگر ملاقات ہوگی تو موسٹ لائکلی ٹیمس میٹنگ یا ہم کسی ٹیکنالوجی تھرو ملیں گے, تو آپ کا بھی آڈینس ہے
جی,
آپ بولیے, شاید کچھ لوگ آسٹریلیا سے بھی سنیں گے.
جی بس میں مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل آف یو از دیٹ کم وتھ اے اوپن مائنڈ اینڈ کم with a mind that I would like to understand and experience this. And all I can assure you from my experience, I've been practicing for over 45 years, and I have seen the changes, how the life has transformed. I'm sure that you will also benefit by coming, learning, and taking a commitment to practice. Just 10 minutes in the morning, 10 minutes in the evening.
Thank you so much, Shekhar ji. So, this was Shekhar Kishore and Neha Sharma. We would like to thank you for coming to our studio. And we talked about Vihangam Yoga Meditation for Inner Peace, which program is going to be here in Templeton on 26 September. You can mark it so that you don't have to come. It's a free event and you can come and take advantage of that. So, let's move on. We'll see how we can see it. Otherwise, as I said, we'll play Megan Woods' interview. And once again, all the best to Crusaders for Future Games. Now we are focusing on finals. So, let's see who comes in the final. And we are hoping, maybe, who knows, Crusaders can take the trophy this time again.
کھل سکے اور چمکے موری بندیا سیا جی ہے آج پدھارے سر پہ سہر سجائے گے روکو نہ مجھے ٹوکو نہ میں ناچو کمریاں ہلائے گے چھاپ تلک سب
जी ने एक नजर में घायल दिल कर डाला, सुबह शाम बस उनके नाम की जपे तू अब तो माला। आए रे अपने प्रेम का तुम पर बना रे ऐसा जाला, आए रे कट्टर आशिक से पड़ गया रे तुम्हारा पाला। तुम्हारी सूरतिया पे मर गए, प्रेम की मूरतिया पे मर गए, कहीं करना दे तुमको जानम ये सोच कर ही डर गए। तुम्हारा फेस मारे शाइन, तुमको जैसे गोल्ड माइन, always be happy, you are 10 out of 9. सब जीना जब से तुझको देखा है बड़ा मुश्किल हुआ है जीना। अरे तेरे नशे में रहता हूँ अब और नहीं कुछ पीना, तेरी सुंदरता को देख के भाई छूटे मेरा पसीना। अब तो आके मेरी बाहों में समा जा, लेके आया मैं बारात बैठ बाजा। छाप तिलक सब,
छाप तिलक सब, छाप तिलक सब मेरे मुंह से मिलना मिलाए के, छाप तिलक सब छे मेरे मुंह से मिलना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, ओए सुहागन कर दे मेरे मुंह से मिलना मिलाए के।
Jalsa Fiji Radio, Jalsa Talent Series and Jalsa Business Series would like to express their gratitude to the following sponsors. Generation Homes, contact them for your building requirements. And Lifestyle Solutions, contact Richard Sevak if you need help with insurance. And contact Varun Jani of Next Step Accountants and Business Advisors for accounting needs. And contact Rohit Sajadeva of Better Choice Home Loans for your financing needs. And contact NZ Flames Baba at Wairaki Road for your hairdressing requirements. And contact T. Nandan of Govice Driving School if you need driving lessons. And contact Anshul Gupta of Client Real Estate, who can assist you with achieving a better sale for your property. And contact Monil Pratap of Majestic Stays if you are looking for accommodation in the city. And contact Danny from On The Go Eastgate for all mechanical requirements. Welcome to Jalsa Fiji Radio. I am Program Director Vinesh, and today I have this privilege of interviewing Honorable MP Megan Woods. So welcome, Megan Woods. You are no stranger to Jalsa Fiji Radio. We have met various times and we had good interviews about various other topics, but today it's different. This time we are going to talk about the recently signed free trade agreement between New Zealand and India, which is, all of us know, it's one once-in-a-lifetime agreement that was signed. And we are going to hear more about Labour's stance, where it stood, and what we have been hearing in the news is Labour, I don't think they minded the agreement that much, but they took a bit of time coming and actually supporting the national coalition-led government, and obviously Labour support was much needed for it to go to the next stage of what we have today. So welcome on board Meganuts, and thank you so much for taking your time and agreeing to speak to us. So we'll start off with the day. So I think before we came on air, you were talking about the traffic in Christchurch.
That's right. But first of all, look, thanks, Vinesh. It's so lovely to be here. It's such an important topic for us to talk about. I think so many people were interested in the free trade agreement and what it means for them in their everyday life. But yes, I live in Hillmorton, and Lincoln Road is sometimes on a Saturday very, very clogged up.
Yes, and that's what we are noticing as well, because we are in Christchurch and we are more used to more like free traffic, but that's growing. And whether it has anything to do with the free trade agreement, we'll maybe find out later as we go into the topic. So I think we'll just dive into the actual deal that we have over here. Maybe we'll start on the positive side. So maybe if we can get the positive feedback from you or from where Labour stands.
Well, first of all, that Labour has always held the position, and so it's National actually, that New Zealand is in the best place when we can have agreement right across all the political parties, because we need to enter into free trade agreements. These are things that last for decades and decades and decades, that they're not going to chop and change if there's a change of government. So I think it is really important that we do have the best interests of New Zealand and that we don't reduce it to the everyday politics. In terms of the positives for New Zealand, I think, you know, this is so clear. It's work that actually Damien O'Connor started when he was Trade Minister, when Labour was in government, strengthening that relationship, and National have carried that on. India is a huge market, and I think for most non-Indian New Zealanders, just imagining the size of the Indian market is something that they can sometimes struggle with. But we know for a number of our key exports, there are so many opportunities. But this isn't just about exports as well. This is also about imports coming in, and the fact that there will be tariffs reduced on Indian goods flowing into New Zealand, which could lead to lower prices. And I think they're the kinds of people, the kinds of things that people want to wrap their head around, like, this is really good, this is what government is doing, but what is this going to mean for me and my family and trying to balance my household budget?
No, definitely. So that is good to know that we have actually have a deal which is going, I mean, that's what we believe it's going to do. It is going to improve our economy, bring it more what we actually need. We want a boost in New Zealand economy. We all agree with that. I think that the next question is from there is, if that was so, why did it take Labour so long to agree?
So there were three key reasons. One is that we needed to see the document, that you can't expect a political party will just blindly sign up to something without having a read through and knowing what the fine print says. We need to know what New Zealand's being signed up for. So we had to wait a bit of a time to see all the documents that we needed to see. The main concerns that we had was around what commitment there is around the New Zealand investment in India. Now, that is a very large number. It's $20 million, about 33 million New Zealand dollars, that it's really what that means. Because if that investment doesn't happen, what we want to know, is there a possibility that a future government could try and sort of reduce the benefits of the free trade agreement? We want our free trade agreements to be enduring. Now, just to put this into context, that $33 million is way larger than any of our other free trade agreements. It's way larger than the China free trade agreement, way larger than the European or the UK trade agreement. So wanting to know that if we start something and all these, foresters and apple growers and meat producers and wool producers, that they set up these really good relationships in India and have really good exports going into that, that's not all of a sudden going to be what we call clawed back. Mm. So that was a key concern. And the third concern was we wanted an assurance from National that we would have written into the legislation that we would have further protections for migrant workers, that we want to make sure that anyone who is coming and working in New Zealand has protection and is treated and paid fairly, and that we wanted to have more inspectors within the sort of the Labour inspectorate so we could check that was happening. It's not good enough that we say, oh, we want all these people to come to New Zealand, and then they're not treated fairly.
Exactly. I'm guessing you had all these negotiations going back and forth with the National or the government at that time. So what happened? Like, what was the result with your negotiations? Were you successful?
So yes, some more resource for the Labor Inspectorate. We still have, it's fair to say, we're still a bit nervous about some of those investment clauses that we know that over time that whoever is in government, and that includes Labor, will need to keep a careful watch on that and see how that's progressing and make sure that we continue to grow what's happening in terms of our relationship with India, not see it pulled back, because we want more and more New Zealanders to get access to Indian markets and to form those relationships in India. And we know that so many, we talk about free trade agreements, but individual companies need to go and form those very good relationships in India to get their goods in and know that they've got a channel to market. So we are saying to people that are starting exporting under that we need to be eyes wide open. We need to know that there's work to be done and that we need to keep a careful eye on that investment clause.
I see. And going your passion about, of course, labor, the labor yeah. force. Obviously, yeah. our people who will be coming from India, and you wanted a bit of protection for them. But what about the critics who are kind of saying, oh, this is going to be a kind of mass kind of migration, stealing maybe more jobs, which...
Well, I think we're seeing some... I'm going to be really frank with you today. I think we're seeing some very ugly politics around that. I think it's very unusual that National haven't been able to pull this together with its own coalition partners. It should be that all parties sign up to it, but we're in a very unusual position where a government of the day doesn't have the numbers to pass it, that they do need the opposition to come in and help them. And I think the kinds of scaremongering we're seeing from New Zealand First is absolutely abhorrent. I also think that Christopher Luxon should take a far tougher line with his ministers. The kinds of rhetoric we're seeing coming from New Zealand First, from Winston Peters and Shane Jones, is unacceptable in New Zealand. Chris Hipkins has been really clear on that. And that Christopher Luxon is the Prime Minister. He should be calling in any minister who is making any of the kinds of comments we're seeing, which are misinformation. Look, this is not necessarily going to increase Indian migration, that we already have so many people coming from India and fulfilling work in New Zealand that we really need here, that we really need these workers to come. This isn't about, as New Zealand First says, opening the floodgates. This is actually about saying this is part of the agreement we've had, and actually the numbers that are in the free trade agreement are fewer than what we see in terms of a normal run of migrants coming from India. And we do not have caps for any other country. Let's be really clear about that. So when we have politicians standing up and saying that, that is targeting our Indian community, and that is not acceptable. And I want to hear more from our Prime Minister making it clear that that is not the country that we want to be.
Thank you, Megan. And that takes us to 10 minutes of our interview. So we are almost 75% of the way. I would like to acknowledge our knowledge partner, Christchurch Bengali Community, for contributing towards this interview, and more to come. We have Amit sitting with us today, who will be seen in the video. And we also have some questions from the community. I mean, we have lots of questions from the community, but we can't actually cover that all here. But I would like to maybe put one question from what I've been hearing from the community, which is if it was the other way around and if Labour was doing the negotiation with India, what would you have been able to, do you think you could have achieved something more?
Well, I think the first question is, did that investment clause have to be so big? The 20 million US or 33 billion. Thank you, Amit. Yes, it's billions, not millions. Did that need to be so big, or is that something that we could have negotiated back a little bit? I guess always for New Zealand, dairy access is going to be a major consideration, the dairy access isn't everything that the New Zealand dairy producers or New Zealand would want to see, but these are things that you can work on over time. But we would have wanted to have seen whether or not we could get more access there. Now, there's some really good provisions in there. I mean, forestry, wood products, sheep, meat, wool, and then even some niche things, wine, honey. Some of these are going to make a real difference. But I think dairy will always be incredibly important for New Zealand.
Thank you, Megan. And on that note, I think that was the recent news that I heard where we were told that there were moments when India was going to walk away from the deal. So do you realistically believe that it was could have been possible? Or do you think India would have its own way?
Yeah, and I mean, that's a, you know, we'll never know in terms of what happens in the room. That really is to the individuals. But, I mean, one of the things that we know is that you don't just walk into a room and start a free trade agreement, that this is about relationships built up over many years and making sure that you have got those strong relationships between our negotiators, between politicians on the Indian side and the New Zealand side. And this is the work that Labour had started, that you've got to have, that even when the talk gets tough, that you do know that you've got a respect and a good relationship there. So we certainly would have pushed hard. Damien showed that in terms of the European Free Trade Agreement, in terms of the UK Free Trade Agreement. He was the Minister of Trade at that time for Labour. But we will never know. I think there's no point kind of dwelling on that now. It's now about looking forward and thinking what would be our priority if we're the government, and it would be to look to strengthen this agreement over time.
Thank you, Megan. We are almost there on time. Now that we know we have got this free trade agreement, and we would definitely, I mean, we all have already seen all the other migrant communities growing, mm-hmm. and we always see you in all those events. Thank you so much for coming along, and it's more like welcoming us, onboarding us. Thank you for doing that, especially Christchurch. You are a familiar face around our migrant communities. But overall, if we look at the South Island, the other southern parts, maybe interior parts, are they all kind of engaging in a similar way? Do you think they are all ready to accommodate these growing migrant communities?
Well, I think in the South Island that our migrant communities are actually so important to our rural communities. If you go down to Ashburton, there's a really large Filipino population. You go down to Oamaru, there's a really big Tongan population that a lot of the workers in our rural communities are. It's not just cities that actually the migrants are really important players in our South Island economy, and we have to keep welcoming people. We need to keep making it clear that that this is a two-way relationship. We love having you here. You're offering so much. And one of the things I have concerns about at the moment with what we're seeing from the kind of rhetoric we're seeing from some politicians is I fear that we're kind of creating some divides, and that worries me. I've been contacted from some of my Indian-born constituents in Wigram who have told me they've been getting letters through their letterboxes, you know, saying some pretty nasty stuff. But that nasty stuff is what people are hearing from politicians, and that is not leadership. And that is where we have such a responsibility. And me coming to your events, it doesn't feel like work. They're always something I look forward to coming to.
Thank you. I mean, we always love you when you wear our Indian attire, yeah. Especially saris, and we are going to see more of them from India, I guess, with this free trade agreement. Maybe even the price might get even more affordable.
Cheaper saris for everybody.
Yeah, exactly. So thank you so much, Megan. That takes us to the end of the interview. As I've said, it's always a joy talking to you. Yeah. It doesn't feel like interview. It's just like talking to you whenever we meet in events, especially. So we will let you go. And finally, the last question before you head off, are you going to the 660 tonight?
No, I'm not going to 660 tonight. I'm actually about to head off door knocking because I'm not standing in Wigram. Dominic Yanzik is our candidate there, so I'm out door knocking with Dominic this afternoon. But I did go to the rugby game, and I'm hoping I've got some tickets to go to the Warriors game because that stadium is amazing, and I think everyone in Christchurch is going to enjoy it.
Thank you so much, Megan. So that was Honourable MP Megan Woods. And she joined us to give the views of the Labour Party, and as we have heard, the contributions of Labour, all the negotiations that the Labour had to do with the government, of course. And that's what we wanted to hear, just to know their side of the story, and hoping that we are able to pass that on to you. And just to close up, whatever you have heard, it's Megan Wood's comments. We are just as interviewer bringing their views to you. Hope you enjoyed this interview, and we will try to bring more such interviews to you. All the best and have a nice day. And signing off from Jalsa Fiji Radio, this is Vinesh.
मेरा ठुमका है नौ लखा तेरा फ्लैट हो होना पक्का अब होगा धक्कम धक्का जरा बच के रहियो रे अक्का अक्का विच टॉकिंग हैंड टू हैंड स्लोली वॉकिंग करने को साथ मेरे मुंडे वेट करे रे पंजाबी बीट पे